अध्याय 28 आहाज के शासन का प्रारंभ। जब आहाज राजा बना तो उसकी अवस्था 20 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 16 वर्ष शासन किया। उसने अपने पूर्वज दाऊद की तरह वही नहीं किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है, बल्कि वो इसराइल के राजाओं के मार्ग पर चला। प्रभु ने जो राष्ट्र इसराइलियों के सामने से भगा दिए थे, उसने उनके घृणित कार्यों के अनुसार बाल की देव मूर्तियां बनवाई, बेन हिन्नोम की घाटी में धूप चढ़ाई और अपने ही पुत्रों की आहुति दी। वो पहाड़ी पूजा स्थानों में टीलों पर और प्रत्येक छायादार वृक्ष के नीचे बलिदान चढ़ाता और धूप देता था। यूदा पर अनेक आक्रमण। प्रभु उसके ईश्वर ने उसे अरामियों के राजा अराम के हाथ दे दिया। अराम ने उसे पराजित किया और वो उसके बहुत से लोगों को बंदी बनाकर दमिश्क ले गया। वो इसराइल के राजा के हाथ भी दिया गया, जिसने उसे बुरी तरह पराजित किया। रमल्या के पुत्र पेकह ने एक ही दिन में यूदा के 120,000 वीर सैनिकों को मार गिराया। ये इसलिए हुआ कि उन्होंने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर को त्याग दिया था। एफ्रेम के वीर योद्धा जिक्री ने राजा के पुत्र मासेया, महल के प्रबंधक अजरिकाम और एलकाना को, जिसका पद ठीक राजा के बाद था, मार गिराया। इसराइली उनके भाई बंधुओं में से 200,000 स्त्रियों और बच्चों को बंदी बनाकर ले गए। इसके अलावा वे लूट का बहुत सा माल समारिया ले गए। यूदा के बंदियों की रिहाई। वहां ओदेद नामक प्रभु का एक नबी था। वो उस सेना से मिलने गया जो समारिया लौट रही थी और उससे बोला, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर यूदा पर क्रुद्ध था, इसलिए उसने उन्हें तुम्हारे हाथ दे दिया। तुम लोगों ने उनकी हत्या इतनी क्रूरता से की कि उनकी आह स्वर्ग तक पहुंच गई। और अब तुम यूदा और यरूशलेम की ये संतान अपने दास दासियां बनाने की सोच रहे हो। क्या तुम समझते हो कि तुम प्रभु अपने ईश्वर के सामने निर्दोष हो? मेरी बात मानो और उन बंदियों को वापस कर दो जिन्हें तुमने अपने भाई बंधुओं में से बंदी बना लिया है, नहीं तो प्रभु का क्रोध तुम पर भड़क उठेगा। तब एफ्रेम के कुछ नेता अर्थात यहोहानान का पुत्र अजरिया, मशिल्लेत मोत का पुत्र बेरेक्या, शल्लूम का पुत्र यहिजकिया और हदलय का पुत्र अमासा लौटे हुए सैनिकों के सामने जाकर उनसे कहने लगे, उन बंदियों को यहां मत लाओ, नहीं तो तुम लोग प्रभु के सामने हमें दोषी बनाओगे। तुम हमारे पाप और अपराध बढ़ाना चाहते हो, जबकि इसराइल का अपराध बहुत भारी है और हम प्रभु की क्रोधाग्नि के शिकार हो चुके हैं। इस पर सैनिकों ने नेताओं और सारे समाज के सामने बंदियों और लूट के माल को छोड़ दिया। अब वे लोग बंदियों की सेवा करने पास आए जिन्हें इस कार्य के लिए नाम से नियुक्त किया गया था। उन्होंने उन सबको जो नंगे थे लूट के माल में से वस्त्र दिए, उन्हें कपड़े और जूते पहनाए, उन्हें खिलाया पिलाया और उनके घावों के लिए मरहम दिया। और जो निर्बल थे उन्हें गधों पर खजूर नगर यरीहो तक उनके भाई बंधुओं के पास पहुंचा दिया। इसके बाद वे स्वयं समारिया लौट गए। आहाज द्वारा अश्शूर के राजा से सहायता की मांग। उस समय राजा आहाज ने अश्शूर के राजा के यहां सहायता मांगने के लिए दूत भेजे। एदोमियों ने यूदा पर फिर आक्रमण किया, उसे पराजित कर दिया और वे बंदियों को ले गए। फिलिस्तियों ने यूदा के निचले प्रदेश के नगरों और नेगेब प्रदेश को लूट लिया। उन्होंने बेल शेमेश, अय्यालोन, गदेरोत, सोको और उसके आसपास के गांव, तिमना और उसके आसपास के गांव तथा गिमजो और उसके आसपास के गांव अधिकार में कर लिए और स्वयं वहां बसने लगे। ये इसलिए हुआ कि प्रभु ने इसराइल के राजा आहाज के कारण यूदा को नीचा दिखाया, क्योंकि राजा ने यूदा में अधर्म को बढ़ावा दिया और वह स्वयं प्रभु से विमुख हो गया। अश्शूर के राजा तिगलत पिलेसेर ने सहायता देने के बजाय उस पर आक्रमण किया। आहाज ने प्रभु के मंदिर, राजभवन और पदाधिकारियों की संपत्ति का कुछ अंश लेकर अश्शूर के राजा को दे दिया था, फिर भी उससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ। राजा आहाज ने अपने संकट के दिनों में भी प्रभु के साथ अपना विश्वासघात बढ़ाया। उसने ये कहते हुए दमिश्क के देवताओं को बलिदान चढ़ाए, जिन्होंने उसे पराजित किया। आराम के राजाओं के देवता उनकी सहायता करते हैं, इसलिए मैं उन्हें बलिदान चढ़ाता हूं जिससे वे मेरी सहायता करें। आहाज ने ईश्वर के मंदिर का सामान इकट्ठा कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने प्रभु के मंदिर के द्वार बंद कर दिए और यरूशलेम के कोने कोने में वेदियां बनवाई। उसने यूदा के प्रत्येक नगर में पहाड़ी पूजा स्थान स्थापित किए, जिससे वहां पराये देवताओं को धूप चढ़ाई जाए। इस प्रकार उसने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर का क्रोध भड़काया। उसका शेष इतिहास और प्रारंभ से अंत तक उसका कार्यकलाप यूदा और इसराइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। आहाज अपने पितरों से जा मिला और यरूशलेम के नगर में दफनाया गया, क्योंकि उसे इसराइल के राजाओं के समाधि स्थल में स्थान नहीं दिया गया। उसका पुत्र हिजकिया उसकी जगह राजा बना।